हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 140। इतना बोलते हुए करण ने उस बॉक्स में रखी हुई एक ज्वेलरी को उठाकर देखा और फिर उसे अलट पलट कर चेक करने लगा, तो कुछ ही देर में उसे भी समझ आ गया कि वो ज्वेलरी नकली है, क्योंकि उस पर कंपनी का कोई भी लोगो प्रिंटेड नहीं था। इसके अलावा वो रियल जैसी शाइनी खूबसूरत भी नहीं थी और उसका फिनिशिंग वर्क भी इतना अच्छा नहीं था। उस ज्वेलरी पीस को करीब से देखने पर साफ पता चल रहा था रियल ज्वेलरी की कॉपी है वो। वो बात समझ में आते ही करण ने जल्दी से उस ज्वेलरी पीस को साइड में रखा और बॉक्स में से दूसरा ज्वेलरी पीस उठाकर उसे देखा। ऐसा करते हुए उसने एक के बाद एक 3-4 ज्वेलरी को देखा और जब वो बात कंफर्म हो गई तो करण भी हैरान परेशान होते हुए बोला, हाँ तुम तो सच बोल रही हो, ये सब कुछ नकली है सारी ज्वेलरी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऑफिस से तो सब कुछ असली ही यहाँ पर आया था। तो फिर करण ने भी जब इस बात को मान लिया और अब वो भी उन लोगों की तरह ही परेशान और टेंशन में लग रहा है। मेघा ने आगे आते हुए कहा, पता नहीं करण, हम भी वही सोच रहे हैं कि ये कैसे एक्सचेंज हो गया, जबकि ये तो सिक्योरिटी गार्ड्स की निगरानी में था और यहाँ पर सब जगह कैमरे भी लगे हुए हैं। ऐसे में कैसे कोई इतना बड़ा बॉक्स लेकर यहाँ से जा सकता है? गेट पर भी सिक्योरिटी है और बाकी सारी जगह पर भी। किसी के लिए भी यह सब चेंज करना इतना आसान नहीं है। मेघा की बात सुनकर करण ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर तुरंत ही दरवाजे पर खड़े उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ बढ़ गया और बहुत ही सीरियस होते हुए उनसे बोला, तुम दोनों में से किसी ने भी ने क्या किसी को भी कमरे के अंदर आते जाते देखा था? करण का ये सवाल सुनकर वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे का मुंह देखने लगे और तभी करण ने कहा, बोलो कुछ बोलोगे? मुंह में जबान है या फिर नहीं? इतना बड़ा कांड हुआ है और तुम दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार होगे, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही सौंपी गई थी। जिम्मेदारी ही नहीं, तुम्हारा काम भी था जो तुमने ठीक से नहीं किया। बताओ अब, मॉडल्स को स्टेज पर जाना है, बोलो जल्दी, किसको आते जाते देखा था तुम दोनों ने वहां पर उस कमरे के आसपास? और डरो मत, वो जो कोई भी था तुम बेझिझक उसका नाम ले सकते हो। करण ने जब इस तरह से उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड से ये बात पूछी तो वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड ही कमरे के अंदर खड़ी मेघा और हर्षिता की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो ज्वेलरी बॉक्स उन दोनों के VIP मेकअप रूम में ही रखा हुआ था, जहां पर ज्यादातर वो दोनों ही अंदर बाहर आ जा रही थीं। उन दोनों गार्ड की नज़रों का पीछा करते हुए करण ने भी कमरे के अंदर देखा तो वो समझ गया कि वो दोनों मेघा और हर्षिता की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन दोनों पर करण को जरा भी शक नहीं था, इसलिए उसने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को समझाते हुए कहा, नहीं ये लोग नहीं, इन दोनों के अलावा, मतलब जितने लोगों को जाने की परमिशन थी उनके अलावा क्या तुमने कोई ऐसा देखा जिस पर तुम्हें शक हुआ हो और जिसे तुमने पहले ना देखा? कोई अनजाना चेहरा या फिर कोई ऐसा जो बेवजह ही उस कमरे के आसपास भटकता हुआ नजर आया हो? करण की पूरी बात सुनकर थोड़ा सोचने के बाद कहा, नहीं ऐसा तो कोई भी नहीं था। इन दोनों मैडम के अलावा इनके मेकअप आर्टिस्ट भी कमरे के अंदर आए गए थे, लेकिन उनके हाथ में मेकअप के सामान के अलावा कुछ भी नहीं था और हम लोगों ने उन्हें आने जाने से पहले चेक भी किया था, और इसके अलावा तो हम दोनों ने ही ऐसा कुछ भी नहीं देखा। वो सिक्योरिटी गार्ड बोल ही रहे थे कि तभी अंदर खड़ी मॉडल्स लड़कियों में से एक ने कहा, ये लोग जरूर अपना काम सही से नहीं करते होंगे और दरवाजा ऐसे ही छोड़कर कहीं इधर उधर चले गए होंगे। उस लड़की की बात सुनकर करण ने पहले उसकी तरफ देखा और फिर उन दोनों गार्ड की तरफ देखने लगा। उस लड़की का इल्जाम सुनकर उन दोनों ने ही सफाई में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं सर, हम कहीं पर भी नहीं गए, पिछले 6 घंटों से हम वहां दरवाजे पर ही खड़े थे। जब से ज्वेलरी बॉक्स आया तब से लेकर अब तक हम दोनों में से एक तो पूरा टाइम यहां पर खड़ा हुआ था, उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने पूरी बातें करते हुए कहा। तो करण बोला, अच्छा तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तुम लोगों की नाक के नीचे से तो कोई ये नहीं निकाल सकता ना? करण की बात सुनकर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड ने फिर से अपना से नीचे झुका लिया, क्योंकि उनके पास करण की बात का कोई भी जवाब नहीं है। करण भी ये बात अच्छे से समझता है कि इस तरह किसी पर भी इल्ज़ाम लगाकर अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और जो सामने है पहले उन्हें उन चीज़ों के बारे में सोचना होगा। ये बात समझ आते ही करण ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए अपने माथे के बालों को पीछे किया और फिर स्नेहा की तरफ आते हुए कहा, स्नेहा वो सारी ज्वेलरी के फोटो है ना तुम्हारे पास, दिखाओ मुझे और मैच करके देखो ये सारे एकदम सेम है या फिर किसी में थोड़ा फर्क भी है, ये बताओ जल्दी से। चेक करो तुम सारी लड़कियां और संभाल कर करना, किसी भी ज्वेलरी का स्टोन निकलना या कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। करण ने उन सभी लड़कियों को ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हुए ये बात कही तो वो सत कंफ्यूज होकर करण की तरफ ही देखने लगी, लेकिन फिलहाल उसे सवाल करने की हिम्मत किसी की भी नहीं है, क्योंकि पहले ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो सभी अब कैसे भी बस उसे सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए वो लड़कियां करण के कहने पर जल्दी जल्दी से वो सब कुछ चेक करने लगी। मेघा ने सब कुछ अच्छे से डबल चेक करते हुए कहा, हाँ डिज़ाइन एकदम ही सेम है, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है तो सिर्फ क्वालिटी का और फिनिशिंग अच्छी नहीं है जैसे कि ओरिजिनल में होती है। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश की गई है जिसमें 90% वो लोग कामयाब भी हो गए हैं। अगर मैं बिल्कुल ध्यान से ना देखती तो शायद मुझे भी पता ना चलता कि ये नकली ज्वेलरी है। मेघा ने करण को पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए बताया तो उसकी बात सुनकर करण ने कहा, फिलहाल ऐसी सिचुएशन में तो हमारे लिए ये अच्छी बात है। चलो तुम सब अब जल्दी जल्दी से अपनी ज्वेलरी पहन लो, कैसे भी अभी स्टेज पर तो जाना ही है क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से हम ये शो कैंसिल नहीं कर सकते। इस बारे में हम बाद में पता लगाएंगे, लेकिन अभी पहले ये शो कम्प्लीट करो। करण ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए कहा तो सभी उसकी बात का मतलब समझ गए और सभी लड़कियां अपनी अपनी ज्वेलरी पहनने लगी। करण के सबसे नजदीक खड़ी लड़की की ज्वेलरी पर करण ने ध्यान दिया तो उसे रियल ज्वेलरी से इस नकली स्टोन में शाइनिंग बहुत ही ज्यादा कम लगी। तो उसने उस लड़की को रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको, तुम लोगों के पास कोई शाइनिंग स्प्रे होगा क्या जिससे कि इन नकली ज्वेलरी की चमक बढ़ जाए, क्योंकि इनमें चमक कम है नकली और चीप स्टोन यूज करने की वजह से। करण ने उन लड़कियों की तरफ देखते हुए ये बात कही तो उनमें से एक जल्दी से भागकर ट्रांसपेरेंट मेकअप हाइलाइटर की स्प्रे बॉटल लेकर आई और सबके सामने उसे दिखाते हुए बोली, ये बेस्ट प्रोडक्ट है शाइन के लिए, इसमें काफी ज्यादा शाइन होती है, हम इसे मेकअप के बाद यूज करते हैं, क्या मैं इसे एक ज्वेलरी पर यूज करके देखूं? वो लड़की चेहरे पर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट को ज्वेलरी पर यूज करने की एडवाइस दे रही थी जो कि सभी को ठीक नहीं लगी और करण भी थोड़ा सा सोचते हुए बोला, रुको, जो एक्स्ट्रा हो या फिर नॉन इम्पोर्टेंट उस पर यूज करना पहले, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
मेघा भी वहां पर खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही है और स्नेहा भी उन सबके बीच ही खड़ी है, लेकिन उसे इन सब की कोई भी समझ नहीं है। इसलिए मेघा ने ही करण की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, इससे कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है, बस मेकअप सेट करने के लिए होता है और इससे चेहरे पर शाइन आती है, लेकिन ज्वेलरी पर इसे यूज नहीं किया गया कभी, शायद ये एक एक्सपेरिमेंट होगा। मेघा ने इतना कहा और करण ने भी हाँ में अपना सिर हिलाकर उन्हें इस बात की मंजूरी दी। तो फिर मेघा ने एक ज्वेलरी पीस जो कि गिरकर टूट गया था उसके स्टोन पर उसे स्प्रे किया तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लगा और एकदम रियल जैसा ही लगने लगा। और फिर थोड़ी देर रुककर उन लोगों ने तसल्ली कर ली कि बाद में इसका कलर चेंज तो नहीं होगा या फिर धुंधला या काला तो नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर इस बात की तसल्ली होते ही उन्होंने फिर सारी ज्वेलरीज पर वो प्रोडक्ट स्प्रे किया और फिर सारी लड़कियों ने अपनी अपनी ज्वेलरी पहन ली और वो सब लगभग पूरी कम्प्लीट रेडी थीं। तभी अंकिता लगभग भागते हुए वहाँ पर आई और उसने कहा, तुम लड़कियां तक रेडी नहीं हो क्या? जाओ, तुम्हारा नंबर आ गया है। हर्षिता, तुम्हें लास्ट में जाना है, बाकी सबसे पहले तुम्हें जाना है श्वेता और फिर तुम्हारे बाद रानी, मीता, आयुष, सानिया। और फिर ऐसे करके उसने सारी लड़कियों के नाम एक के बाद एक लाइन से ऑर्डर में बोले, जैसे साफ से ही उन सबको स्टेज कर जाना था। उन सभी ने अपनी अपनी ज्वेलरी पहन ली है लेकिन अंकिता को फिलहाल इस बारे में नहीं पता और करण ने भी उन लोगों को चुप रहने का इशारा किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि अभी इवेंट शुरू होने से पहले इस बारे में ज़्यादा लोगों को पता चले। उसके बाद इवेंट स्टार्ट हुआ और बैक स्टेज से वो लड़कियां एक एक करके रैंप पर जाने लगीं और किसी ने अंगूठी पहनी हुई थी, किसी ने इयररिंग तो किसी ने ब्रेसलेट और किसी ने पायल, लेकिन वो सारे डिज़ाइंस बहुत ही यूनिक थे और सभी को पसंद भी आ रहे थे। उन लड़कियों के आते ही वहाँ आसपास बैठे मीडिया पर्सन और जितने भी लोग उस इवेंट को कवर करने के लिए कैमरा लेकर बैठे हुए थे उन सभी के कैमरे और फ्लैशलाइट स्टार्ट हो गईं और उस चकाचौंध के बीच में रैंप पर पूरे कॉन्फिडेंस से चलती हुई लड़कियाँ एक के बाद एक अपना पूरा टैलेंट दिखाकर चलती हुई वहाँ एंड तक आ रही थीं और फिर अपनी अपनी ज्वेलरी को शोकेस करने के बाद वो मुड़कर वहाँ से वापस जा रही थीं। ऐसे करके एक के बाद एक कुछ ही मिनट में सारी 14 लड़कियां वहां पर आ गईं और फिर पीछे जाकर एक बेड़ी लाइन में खड़ी हो गईं और सबसे लास्ट में हर्षिता बीच में से निकल कर आई और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके कानों के इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे थे, गले में पहना हुआ डायमंड चोकर और फिर उसके हाथ के ब्रेसलेट, रिंग सभी उसकी ड्रेस के साथ बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहे थे जो कि उसने काफ़ी अच्छे से कैरी भी किए थे और उसने बहुत ही खूबसूरती से अपनी ज्वेलरी फ्लॉन्ट की, जिसे देखकर शिविका और रुद्र जो कि सामने बैठे हुए थे स्टेज पर, उन लोगों ने सारी लड़कियों के बीच हर्षिता की परफॉर्मेंस देखकर उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील किया क्योंकि वो उन सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल और खूबसूरत लग रही है। इसके अलावा उसका परफॉर्मिंग भी सबसे बेस्ट था तो उसे मेन मॉडल के लिए सिलेक्ट करके उनमें से किसी ने भी कोई गलती नहीं की। क्रमशः